काउंसलर है, तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से हमको आज ये जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तो मैं प्रभु जी से विनती करता हूँ कि वो यहाँ पे
हरे कृष्ण।
कीर्तन के साथ आज का कथा कथा की शुरुआत करें। तो आज के दिन हम गोवर्धन इको विलेज में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाने वाले हैं। तो शाम को 4:30 बजे से जो हमारी गौशाला है वहाँ से रथ की शुरुआत होगी और यहाँ पे 6 बजे तक रथ पहुँचेगा। फिर यहाँ पे जगन्नाथ जी रथ से आके यहाँ पे विराजमान होंगे और यहाँ पे महाआरती होगी, कथा होगी और सबके लिए प्रसाद भी होगा। तो हम प्रभु जी का यहाँ पे स्वागत करेंगे हमारे पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोल के। तो सब लोग हाथ ऊपर ऊपर उठाइए और 3 बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। किसी का मोबाइल यहाँ पे गुम हो गया है, किसका मोबाइल है? ये यहाँ पे था। सिंपल है।
जय राधा माधवा कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनाचारी यमुना, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा प्रस्ताया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतांगदादार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur. Jai Om Vishnupad, Paramahamsa Parivajaka Acharya Stotra Sat Srimati Divine Grace. Isi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा द्वारका धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय भागवत धर्म की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुय एव च पदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्राणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान रथ यात्रा महामहोत्सव की। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना समय निकाल कर, आज विशेष दिन है। वैसे हर रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है, लेकिन आज का दिन खास विशेष है। क्यों विशेष है? हम कुछ समय के लिए साथ में हैं, कुछ ऐसे विषयों का हम प्रयास करेंगे जिससे हमें समझे कि ये विशेष क्यों है, ऐसा क्या विशेष। निश्चित मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को लगेगा कि बहुत ही विशेष है। हाँ, तो उसके लिए सुनना तो चाहिए। पीछे जो बैठे हैं सबको सुनाई दे रहा है? भक्ति का जो कार्य है, आध्यात्मिक कार्य हम लोग कर रहे हैं कलयुग में, ये कलयुग का कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल है। सही है ना? ये कार्य करना बहुत मुश्किल है ना? किसी से भी पूछो, अरे यार ये सब कहाँ टाइम है अपने पास, ये सवाल आता है ना। इतने व्यस्त रहते हैं अपने दैनिक कार्य में, तो ऐसे विषयों के लिए समय नहीं होता। हम भी जानते हैं, लेकिन भगवान भी जानते हैं। उनको भी मालूम है कि कलयुग में बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारे भागवत में एक ऐसे श्लोक आता है, प्रायेण अल्प आयुषा कलेर अस्थिर युगे जनम। हम लोग कौन से युग में रहते हैं? कलेर अस्थिर युगे जनम। प्रायेण अल्प आयुष, प्रायेण अल्प आयुष का अर्थ क्या है? हमारी आयु अल्प है ना, इसके लिए कुछ चर्चा करना जरूरी है। प्रायेण अल्पायुष कलेर अस्ति युगे जना मंद सो मंद भाग्य उपाद्रता। बहुत ही आलसी है इस विषयों के लिए। दूसरे विषयों के लिए टाइम नहीं है, उत्साहित है पैसे कमाने के लिए, बहुत उत्साहित है, लेकिन थोड़ा सा ये विषय हरे का टाइम है ना, इसलिए हम ज़्यादातर किसी, अरे कलयुग है, आप क्यों ये सब बता रहे हैं, कलयुग में क्या है ना, सब दोष ही दोष। इसलिए एक और एक श्लोक आता है भागवत में, कलेर दोष निधे राजन अस्थिर एक महान गुना कीर्तनद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये श्लोक ये बता रहा है कि कलयुग दोषों का सागर है, सागर है, कोई तालाब नहीं है, कोई कुंड नहीं है, क्या है? दोषों का सागर। एक लेकिन वरदान है, किसके लिए वरदान? हमारे लिए। अस्थिर एक महान गुना, क्या है वरदान? भगवान के नाम रूप इस कलयुग में वो हमें उपलब्ध है। उसको करने से क्या हो गए? हम जिस जगह पे फंसे हुए हैं, अरे आप बोले क्या बोल रहे हैं फंसे हुए, अरे मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं कहाँ फंसा हूँ, मेरे को कोई किसी ने बांध के रखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम ये भवरोग जन्म और मृत्यु का जो एक सागर है उसमें फंसे हुए हैं। तो ये वरदान ऐसा है कि कलयुग में बहुत आसान है, नहीं लग रहा है? आसान नहीं है, बताया आसान, इसलिए बहुत बड़े देवतागण भी लाइन में खड़े हैं अरे यार कलयुग में जन्म लेते हैं, अभी कलयुग में तो दोष है, लेकिन दोषों के बीच में एक वरदान भी है। तो उसी के साथ ये भी नहीं कि, और एक भागवत में ऐसा श्लोक आता है, अरे कलयुग तो दोषों का सागर छोड़ो, यहाँ पे तो इतना अज्ञान का अंधकार है, किसी को मालूम नहीं क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन भगवान और एक वरदान दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा है, ये भी भागवतम में आता है, देखो और एक वरदान हम सब के लिए, एक के बाद एक के बाद एक, फिर भी हम बोलेंगे ये बहुत यार मुश्किल है। यहाँ ऐसे बताया कि कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृश्यम एषा पुराणार को दुनोदिता। इसका अर्थ ऐसा है, जब भगवान यहाँ से चले गए 5000 साल पहले भगवान उतरित थे कृष्ण भगवान, फिर वो चले गए, जाते समय उन्होंने ज्ञान धर्म सब, लेकिन एक और एक वरदान दिया है, जैसे सूरज का उदय होता है उस तरह से भागवतम है, भागवतम यानी भगवान के बारे में ज्ञान भगवद गीता। ये एक अंधकार में जब सूरज उदय होता है तो अंधकार का क्या होता है, सब चले जाते हैं। तो भागवत ज्ञान हमें रोशनी देता है इस अंधकार में। अंधकार जानना है तो खाली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ना, न्यूज़पेपर में पता चलते क्या चल रहा है। तो ऐसे जगह पे है, लेकिन आप इसके लिए भी बोलेंगे यार कौन पढ़ेगा भागवत, हम किसको टाइम है, हमारा यूनिवर्सिटी का ही पढ़ना ही बहुत, सब का पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ आ रहे आ रहे आ रहे हैं, उनकी उत्सुकता बहुत है, वो जल्दी सुनना चाहते हैं, कुछ समय है अपने में ये भी विषय आ जाएगा। हाँ तो कहाँ क्या कहाँ गए थे हम, क्या बोल रहे थे, हाँ तो भागवतम भी है ना। तो इसके बाद भी अगर हम ऐसे जवाब करें अरे क्या है, जैसे प्रभु जी बोल रहे अरे धाम भी तो है, हाँ निश्चित है धाम में भी आया, आप सब लोग धाम में आए हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, तो ये भी है। तो वैसे एक बार ऐसे हुआ कि ब्रह्मा जी जो है हमारे, ब्रह्मा जी को सब जानते हैं, कितना मुख है उनका, 4 मुख है ना। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है, सृष्टि का निर्माण करते हैं। उनका आयु मालूम है कितना है उनका, हमारे जो 4 युग होते हैं ना, हाँ सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, उसको 1000 से गुना 1000 बार, तो उनका 1 दिन होता है, 1 दिन, और वैसे ही 1 रात। जब रात होती है तो प्रलय होता है, बड़ा प्रलय नहीं छोटा प्रलय, तो उसमें सब लोग प्रलय में सब लोग चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं और सुबह उठ के क्या करते हैं, फिर से सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो सोचने लगे ये क्या चल रहा है, ये क्या है काम है, मैं प्रलय होता है उसके बाद मैं सृष्टि निर्माण करता हूँ, फिर वही लोग फिर वही जीव वही, फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इसमें लोग फंसे हुए, अरे इनका कुछ उद्धार होगा कि नहीं, मैं तो तंग आ गया हूँ ये काम से करके। वो किसके पास गए, नारायण के पास गए, मैं बहुत परेशान हो गया, ये ऐसा क्यों कर, कुछ तो किस तो कीजिए इन लोगों के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो ब्रह्मा जी, मृत्यु लोक में चले जाओ, मृत्यु लोक में एक ऐसा जगह है, एक नीलाचल पर्वत है, उसका वो जगह का नाम है श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये बहुत जगह इतना पवित्र जगह है, ये जगह का कभी प्रलय आते तो भी कुछ नहीं होता है, और इस जगह पे जाकर जो लोग मेरा दर्शन करेंगे सिर्फ क्या करेंगे, उनको मैं पूरा इस संसार के सब पापों से मुक्त करूंगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करूंगा। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, अरे वाह मैंने तो ऐसा भी नहीं चाहता, इन्होंने तो मैं जो सोचा था उससे भी ज्यादा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम उस जगह पे जाओ और तपस्या करो और मैं दर्शन दूंगा, और उस जगह पे जो भी आएगा दर्शन लेगा तो ये जगह कहाँ पे आ गया, मृत्यु लोक में कहाँ है ये जगह, जगन्नाथपुरी धाम, जिसका उत्सव आज हम मना रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रह्मा जी आ गए, तपस्या किया, तो भगवान दर्शन के लिए तैयारी थे देने के लिए। एक व्यक्ति बहुत नाराज हो गया, अरे क्या चल रहा है, अरे अगर ये सच हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे लिए कुछ काम ही नहीं रहेगा। कौन था वो व्यक्ति? हाँ, यमराज भाग के गए, वो भी गए उधर ही नीलाचल में गए, ब्रह्मा जी भी थे वहाँ पे। अरे क्या कर रहे भगवान, ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या है, मेरा तो काम है लोगों को जो पाप करते हैं जो उनका हिसाब रखना और उनको दंड देना, लेकिन आप बोलते हैं यहाँ पे आएंगे तो सब लोग बस फ्री ऐसे जाएंगे तो फिर मैं। तो भगवान लक्ष्मी की तरफ देखा उन्होंने, तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा देखो यमराज, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन ये जो 5 कोस की जमीन है, ये 2 कोस सागर के पास हैं, 3 कोस बाहर, ये जगह पे तुम्हारा पावर नहीं है, यहाँ पे हम लोग खुद देख लेंगे, जो भी आया उसका पाप सब नष्ट हो जाएगा और उसको क्या करना है हमारे हाथ में, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ काम नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा है तो हम तो यहीं रह गए, दर्शन दे गए, लेकिन तुम्हारी बात को भी मानने के लिए हम लोग कुछ समय तक लुप्त रहेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है जब मेरे शुद्ध भक्त मेरे सामने आता है तो मैं ऐसे लुप्त नहीं रह सकता, मैं प्रकट होता हूँ। तो एक मेरा ऐसा भक्त आएगा भविष्य में, उसका नाम होगा इंद्रद्युम्न, वो जब आएगा मुझे ढूंढते तो मैं प्रकट होगा, लेकिन वो रूप कुछ अलग होगा। तो शास्त्र में ऐसे बताया है कि ब्रह्मा जी के जो 100 साल हैं, एक दिन कितना लंबा है मालूम पड़ा ना आपको? हाँ बहुत लंबा है, हम हिसाब नहीं लगा सकते। तो 50 साल जो है ब्रह्मा जी का, उस 50 साल में नील माधव एक लक्ष्मी नारायण के रूप में वो इस संसार में दर्शन देते हैं, लेकिन दूसरा 50 साल में वो चतुर्मूर्ति दारू ब्रह्म जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में यहाँ पे रह गए, और जो भी उनका दर्शन करेगा, देखो आप दर्शन करने वाले हैं, जो भी उनका दर्शन करेंगे उनको वही लाभ होगा, वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने वरदान दिए। तो ऐसे कर ये कभी हुआ है बहुत बहुत करोड़, क्योंकि ये जो रथ यात्रा है इसका किसी को मालूम नहीं कभी शुरुआत हुआ, बहुत ही प्राचीन है, फिर भी स्कंद पुराण में थोड़ा कुछ बताया कि कैसे शुरुआत हुआ है, तो उसके ऊपर हम उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ है। तो इसमें एक भाव क्या था, सिर्फ कृपा का भाव है ना, ब्रह्मा जी के भाव क्या था, कृपा, लक्ष्मी नारायण का भाव क्या था, कृपा, सब कृपा दे दो, हम सब कृपा के, सब कृपा के ही हैं, कृपा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हाँ इतना आसान नहीं है, हमें लगता है ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान हमारे से ज़्यादा चाहते हैं कि इनको कैसे मैं सही रास्ते पे ले आऊँ, कैसे भूल गए उनको फिर से कैसे ध्यान। तो ऐसा है, सो ये हमारे देश वैसे पवित्र भूमि है, आप सब जानते हैं कि 4 धाम हैं, ऊपर बद्रीनाथ है उत्तर में, और हमारे यहाँ पे पश्चिम में द्वारकानाथ है, पूरब में जगन्नाथ है, और दक्षिण में रामनाथ, यानी राम भगवान रामचंद्र का एक तीर्थ स्थान है। तो उसमें से ज़्यादा जगन्नाथपुरी को बताया गया कि इनसे ज़्यादा कृपा अभी तक ऐसे कोई अवतार ने दिया ही नहीं है। अवतार आए गए लेकिन ये है ऐसे रहेंगे, विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए, जो हमने बताया कलयुग में किस तरह के लोग हैं, तो उनके प्रेम से उन लोगों की उद्धार कैसे करें। तो फिर कहा जाता है कि भक्ति को जगाना है तो ऐसे पांच विषय हैं उसके संपर्क में आ जाएगी, भक्ति जाग जाता है। हाँ, एक है ऐसे कोई शुद्ध भक्तों के संग में आना, एक है भागवत कथा सुनना, एक है भगवान का नाम जाप करना, चौथा है भगवान का प्रसाद, और पांचवा है भगवान की विग्रह की सेवा, और एक है जो प्रभु जी बहुत ही वो है धाम में रहना। अभी आपको प्रसन्न हो गए हैं? तो इसके संपर्क में जो भी आता है, थोड़ा भी अगर सीरियसली जुड़ जाता है, उसके दिल में जाग जाता है। अभी हरि नाम कलयुग में भगवान बताया जाता है त्रियुगी है, कलयुग में अवतार नहीं लेते हो, नहीं लेते। फिर आप बोले अरे चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, लेकिन वो छन्न अवतार हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन दूसरे जो अवतारित रूप है यही है, भगवान का नाम, भागवत, विग्रह, धाम, इसके संपर्क में। अभी भगवान का नाम जाप करते समय भी हमें क्या आती है जो नहीं आना चाहिए? हाँ, नहीं बोलना चाहते। सुबह उठना तो बहुत मुश्किल काम है, अरे नींद आती है बहुत। अगर जप करना चाहते हो तो निद्रा देवी उसी समय आ जाती है, तो ये भी मुश्किल हुआ। लेकिन उस समय अगर प्रसाद का प्लेट ला के रख दे तो नींद आ रही है थोड़ा, लेकिन प्रसाद का प्लेट सामने आया, नींद आएगी नहीं आएगी ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, कलयुग के लिए कुछ और कुछ करते हैं, ये लोग तो जाप करने के लिए भी नहीं है। तो एक बार ऐसे कथा बताया है, देखो रथ यात्रा का महोत्सव बहुत साधारण लग रहा है भारी नजर से, अंदर से इसमें बहुत सारी ऐसे कृपा इतना भरा हुआ है। कृपा छोड़िए, बहुत ही घुए विषय भी ऐसे जो आध्यात्मिक जीवन के सबसे श्रेष्ठ जो एक स्तर होता है भगवत प्रेम, और उसमें भी राधा रानी का प्रेम, उससे ऊंचा प्रेम है ही नहीं कोई। उस भाव का भी एक अंदरूनी बात है, वो सबको नहीं मालूम। ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें, प्रभुपाद को उनके गुरु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चात देश में जाके, तो उन्होंने कहा उसके बाद इधर आया, और अभी हमें उनकी कृपा से कुछ मालूम पड़ा। तो प्रसाद के लिए तो ऐसा है क्या? अरे बाबा प्रसाद भी ले लेंगे बहुत हो गया, प्रसाद लेना मुश्किल है। तो एक बार ऐसे हुआ कि नारद मुनि गए वैकुंठ में, लक्ष्मी जी की बहुत सेवा करने लगे। तो लक्ष्मी जी को लगा क्यों नारद मुनि इतना सेवा कर रहे हैं, क्या बात है तुम्हें, क्या मुझे बस एक मैं बहुत तरस रहा हूँ, मुझे नारायण का जरा महाप्रसाद दे देना। तो लक्ष्मी जी ने बोला कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि मेरा प्रसाद किसी को नहीं देगी। तो नारद जी मैं नहीं दे सकता, कुछ और कुछ मांगो ना तुम्हें। नहीं मुझे सिर्फ प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी कह रहे मैं क्या करूँ, मैं स्वामी ने तो बोला देना ही नहीं है। तो दूसरे दिन जब भगवान को परोस रही थी तो अपना चेहरा बहुत ही दुखी था, तो नारायण ने पूछा क्या बात है, तुम इतना ऐसा भारी चेहरा करके बैठी हो, क्या बात है? हाँ मैं एक समस्या में हूँ। वो हमारे नारद मुनि जो है बहुत ही चाहते हैं कि आपका महाप्रसाद, और आपने तो कहा नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है, चलो नारद मुनि के लिए एक्सेप्शन, मैं कभी उधर इधर देखूंगा, मेरे सामने मत उठाना, तो मेरा प्लेट उठा के दे देना उसको। तो नारायण भी बोला जाने दो, चलो कृपा। तो नारद जी को क्या मिला, ये जैसे ही प्रसाद मिल गया, नारद मुनि का भाव पूरी तरह से बदल गया। वैसे भी वो नारायण 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 बोलते बहुत प्रसन्न रहते, लेकिन महाप्रसाद देने के बाद उनका भाव ऐसा बदल गया, नाचने लगे, कूदने लगे, रोने लगे, गाने लगे, सब लोगों में जाने लगे, घूम के उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है, एकदम ऐसे करके वो कैलाश पर्वत आ गए। तो शिव जी देख रहे क्या हो रहा है, नारद जी को ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है। नारायण नारायण बोलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये तो एकदम मेरे नियंत्रण के बाहर है। उनको धीरे से पकड़ पकड़ कर उनको छुप किया। बोलते क्या हुआ, तुम क्या आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया। अच्छा, तो फिर मेरे लिए कुछ? अरे वो तो बस मैंने पूरा ले लिया, कुछ बचा नहीं था। शिव जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के मैंने कुछ नहीं रहा। जैसे हाथ जोड़ा तो महादेव का नजर गए हाथ के ऊपर, तो वहां पे एक कर्ण प्रसाद बचा था, उन्होंने ले लिया। जैसे उन्होंने ले लिया वो तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य कभी होता है? प्रलय के समय। तो सब लोग डर गए, देवता गण सब डर गए। पार्वती बोल रही क्या हो गया स्वामी, आप क्यों ऐसा नृत्य कर रहे हैं? तो शिव जी ने बताया ऐसा ऐसा है, क्या मिला मुझे? महाप्रसाद मिल गया। तो पार्वती ने पूछा मेरे लिए कुछ? अरे वो तो थोड़ा सा मिला था, मैंने ले लिया तुम्हारे। तुम इतने भाग्यवान नहीं हो, सबको नहीं मिलता हो। ओ बाप रे, अपने धर्म पत्नी को ऐसा बोला तो पार्वती, मैं भाग्यवान नहीं हूं इसलिए नहीं मिला मुझे। क्रोधित हो गई, बोली मैं ऐसा तपस्या करूंगी। उसके तपस्या के क्रोध से पूरे ब्रह्मांड में इतना गर्मी फैल गई, देवता लोग खाहा मचाने लगे, क्या हो रहा है, क्या रौ मचल गया। वो पहुंच गया न्यूज किधर, नारायण। पूछा क्या बात है क्या? अरे आप महाप्रसाद देते हैं, देखो महाप्रसाद का क्या प्रॉब्लम हो रहा है सब। उधर पूरा पार्वती इतना क्रोधित हो गई है। नारायण आ गए, पार्वती, पार्वती क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें तुम्हें मिल जाएगा सब। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं, मेरे सब वंशज। उनके वंशज कौन है? पार्वती के। हाँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं गणपति कार्तिक या नहीं, पार्वती कौन है? प्रकृति। प्रकृति को कौन पोषण कर रहा है? हम सबको पोषण कौन कर रहा है? प्रकृति। तो हम सब उनके वंशज है। तो उन्होंने कहा मेरे सब वंशज, सब में उसमें कौन है? सिर्फ इंसान आए? सब पशु जानवर सब लोगों को, उनको मिलेगा तभी मेरा मन तृप्त हो जाएगा। तो फिर नारायण ने कहा ततास्तु, मैं एक ऐसा समय आएगा मैं इस रूप में मैं कलयुग में अवतरित हूँ, उस समय जो भी मेरे को भोग चढ़ेगा, क्योंकि भोग तो बहुत ही प्रख्यात है ना, लेकिन मेरे बाद वो आएगा बिमला देवी जो अभी भी जगन्नाथपुरी में, मैं तुम्हें पास ही रखूँगा, तुम ले लेना उसके बाद। इसलिए शिव जी का मंदिर बाहर है, बिमला देवी का अंदर है, तो उनको सब मिल रहा है। और उसके बाद सबको मिलता है। और वो प्रसाद इतना उसकी महिमा है कि अगर एक जानवर भी लेता है, जानवर से भी वो छोड़ दिया हुआ भी प्रसाद हो, प्रसाद ही रहता है उससे भी, कोई भी उसको स्वीकार करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इतना प्रसाद। तो ये है भगवान की कृपा कि इस रूप में भी वो हम सबको उपलब्ध है। तो फिर मैंने वो कथा वहाँ पे छोड़ी, क्या बोला था भगवान ने कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे शुद्ध भक्त आएंगे तो मैं प्रकट होगा। वो नाम शुद्ध भक्त का नाम क्या था, कौन था वो नाम, राजा का नाम इंद्रद्युम्न राजा था। तो ऐसा हो गया, इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, ये बहुत पुरानी कथा है। देखो राजा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन इसके हृदय में एक ऐसा भाव था, बहुत ही वो बेचैन सा कि क्या मैं कभी भगवान का दर्शन कर सकता हूँ। देखो ये अगर ऐसा भाव होगा, मुझे आज मंदिर जाना है, दर्शन करना है, ऐसा, तो यही हमारा गुण है, भगवान आदान प्रदान तुरंत कर दे। तो कथा बहुत लंबी है, हमारे पास समय नहीं है। इंद्रद्युम्न महाराज किसी तरह से पता चल गया कि यहाँ पे भगवान दर्शन दे रहे, कहाँ पे दे रहे, है ना, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल, अनेक अनेक नाम है, इतना पवित्र जगह। तो जब वो आए हैं अपने सेना के साथ, भगवान लुप्त हो गए, चले गए थे, तूफान आया था, सब चले गए। तो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तब आकाशवाणी हो गया, फिक्र मत करो, मैं फिर से आऊँगा, लेकिन धारु ब्रह्म के रूप में तुम्हें आ जाऊँगा। इस तरह से कहीं यज्ञ करने के बाद इंद्रद्युम्न महाराज को ये रूप में भगवान आए और वो वहाँ पे विराजमान आज तक भी है। इसलिए ये जो रथ उत्सव है, कितने मुगलों के समय, अंग्रेज़ों के समय बहुत लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन कभी इसे रोक ही नहीं सके। हर साल में एक बार इतने लोग आते हैं। तो ये है भगवान की असीम 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 कृपा के साथ हम सबको दर्शन देने के लिए इस रूप में आते हैं। हाँ, ये सवाल ज़रूर आएगा कि ऐसा रूप क्यों, कुछ अद्भुत है ना रूप। हाँ, बड़े बड़े आंखें, लाल आंखें, ऐसे मुंह, ऐसा हाँ आंत, ऐसे हाथ ही नहीं है, हाँ, और पैर तो नहीं है, गला नहीं है, ये क्या है भाई, भाई ऐसा रूप क्या है। तो इसके लिए अभी ये आता है, प्रभुपाद के कृपा से हमें पता चला, जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले स्वयं भगवान अवतरित हुए थे, स्वयं कृष्ण, जगन्नाथ जी यानी कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण, जब वो यहाँ पे अवतरित हुए थे, तो उन्होंने इस भाव, सच्चा जो भाव है राधा और कृष्ण का, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो एक छन्न अवतार हैं, कई लोग पूछते हैं दर्शन करते समय, ये कौन है, राधा कृष्ण तो हमने पहचान लिया, ये कौन, ये है छन्न अवतार। भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आते हैं, लेकिन कौन से भाव में आते हैं, राधा रानी के भाव में। अभी राधा रानी का भाव क्या है, विरह भाव, भगवान से अलग होने के बाद बस भगवान का स्मरण इतना कि जब कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका गए, कभी मिले नहीं, तो विरह भाव, तो ये भाव में आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो रथ के समय चैतन्य महाप्रभु ऐसे कुछ श्लोक बोलते थे, ऐसे कोई भजन गाते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। तो हमारे परंपरा में ऐसे महान संत, देखो ये सब ज्ञान है, ये सब बड़े बड़े महान संत शुद्ध भक्तों के हृदय में छुपा हुआ है, जब तक वो नहीं बताएगी हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो रूप गोस्वामी ने इसे बाहर निकाल कर बताया, ये कौन सा भाव है, भगवान रथ 500 साल पहले रथ को खींच के रथ के सामने आते हैं, तो जगन्नाथ जी जो कृष्ण है वो देख रहे हैं राधा रानी को, जो है चैतन्य महाप्रभु, और राधा रानी उनको खींच कर ले जाना चाहती है, कहाँ पे, गुंडीचा, और गुंडीचा कहाँ है, वो वृंदावन है। तो फिर इसके बारे में भी आप पूछे गए, ये समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो जब भगवान चले गए और द्वारका में थे, एक ऐसा समय आया, ब्रजवासियों को पता चला, हस्तिनापुर वालों को भी पता चला कि सूर्य ग्रहण है, और सब तरह के अनर्थों से अगर मुक्त होना है तो कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। तो सब लोग कुरुक्षेत्र गए, सब लोग, पांडव लोग, द्वारके से, और ब्रजवासी भी गए। ब्रजवासी लोग क्यों गए कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण के लिए गए, उनको पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं। तो जब ब्रजवासियों ने देखा, विशेषकर राधा रानी और गोपियों ने देखा, कृष्ण को दूर से देखा उन्होंने, तो उनका मन में बहुत, अरे ये तो कृष्ण ऐसे, हमारे कृष्ण ऐसे कैसे हैं, ऐसे मुकुट लगाया हुआ है, एक क्षत्रिय का पूरा पोशाक है, और हाथी हैं, घोड़े हैं, एक सब, तो बहुत दुखी हो गए। तो वो चाहते थे, तो वो अपने गीत से कृष्ण को हाँ स्तुति कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप फिर से वृंदावन में जैसे थे, एक 10 साल के लड़के हम लोग कैसे वृंदावन में घूम रहे थे, गाय गोचरण करते थे, आप में मोर पंख होता था, हाँ, और बांसुरी होता था, ये भाव में वो उनको फिर से बुला रहे हैं, बोलते हैं आप आ जाइए वृंदावन में। तो एक तरह से ये बहुत हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जिस अवस्था में भी है, ये तो निश्चित है कि हमारे हृदय में बहुत जन्मों से जमा हुआ अनर्थ है, पापों का जो जो है, कितने जन्मों से हम भूल चुके हैं। तो अगर भगवान को हम बुला रहे हैं तो ऐसे जगह पे आएंगे वो रहने के लिए? हाँ, ऐसा कुछ जगह चाहिए ना। तो अगर ये हृदय को शुद्ध कर हम अगर उनको बुला रहे हैं तो रथ को खींचते समय ये भाव से हम उनको बुला रहे हैं। ऐसे मत सोचना अरे बस रस्सी पकड़ लिया तो बस मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से, ये भी भाव हो कि कृतज्ञता भाव हो कि भगवान चाहते हैं कि हम इस मृत्यु लोक, ये जो दुखालय हमें संसार में क्यों फंसे हैं। हाँ, ये आयु बहुत कम है, मैंने बताया ना प्राय ना अल्प आयुष्य बहुत कम है ना, हाँ, और इसमें क्यों थोड़ा सा एक उत्साह आ जाए कि चलो यार कुछ आकर्षण बढ़ जाए भगवान के बारे में जानना, और उनकी कृपा क्या है, उनकी प्रेम क्या है, वो कितना चाहते हैं कि हमें उनके पास आए, इस भाव से हम खींचते हैं। सही है? तो ये है कुछ बाहरी नज़र से समझना, कुछ अंदर ही, अंदर की भाव बहुत ही गुई है, लेकिन ये भी हमें प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये पता चल रहा, तो कितना बड़ा भाग्य हमारा। तो इसलिए आप जब रथ खींचेंगे, आज रथ यात्रा में भाग लेंगे, तो इसे कुछ, वैसे तो भाग लेना, सिर्फ भाग लेना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी समझे कि भगवान का ये रूप ऐसा क्यों है। अभी सवाल आएगा ये ऐसा रूप क्यों है भाई, ये क्या है, आंखें बड़े बड़े क्या है। द्वारका में जब थे भगवान तो रुक्मिणी और उनके अनेक रानियां बहुत परेशान हो रही थी कि रात को नींद में भी गोपी गोपी बोलते हैं ऐसा क्या है वृंदावन में कि हम लोग यहाँ रहते हुए इनको गोपियों का याद आ रहा है। तो समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ वृंदावन की लीला सुना ही नहीं था। तो उन्होंने किसको पकड़ा, रोहिणी को। रोहिणी थी वहाँ पे, देवकी भी नहीं थी, तो देवकी रोहिणी, रोहिणी को बुलाया तो रोहिणी ने बोला नहीं अगर मैं ये बोलने लगूंगी तो फिर कृष्ण बलराम आएंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल होगा, मुझे नहीं, मैंने बोलना है। तो सुभद्रा ने कहा ठीक है मैं बाहर खड़े रहती हूँ, तुम कथा बोलते जाना, अगर कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो मैं तुम लोगों को वार्निंग दूंगी। तो सुभद्रा बाहर खड़ी थी और द्वारका में कथा चल रहा है, देवकी रुक्मी रोहिणी बोल रही है, सब द्वारकावासी ये सब लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे में सुभद्रा बाहर खड़ी है तो उनको लगा क्या बोल रहे हैं, मैं भी सुन लेता हूँ थोड़ा। तो वो सुन लिया तो उसका रूप बदलने लगा, उसके आंखें ऐसे बड़े हो गए, उसके हाथ अंदर चले जाने लगे। तो तभी कृष्ण बलराम वहाँ से जा रहे थे, बोलते अरे सुभद्रा क्या कर रही है, क्या सुन रही है, चलो हम भी सुनते हैं आके। वो भी सुनने लगे, तो दोनों सुनने लगे, तो वो भी उतने भाव वो हो गए कि उनके आंखें ऐसे बड़े हो गए, हाथ अंदर चले गए, गला पूरा ऐसे बैठ गया और ऐसा मुख हो गया। तो ये रूप में तीनों सुन रहे हैं, तभी नारद मुनि वहाँ से गए। तो नारद मुनि जैसे ही वहाँ से आए, तुरंत कृष्ण बलराम और सुभद्रा ने अपना, तो नारद मुनि ने कहा तो मैंने तो देख लिया। हाँ तुमने देख लिया, लेकिन ये रूप हम नहीं दिखा सकते तुम। तो फिर वो नारद मुनि के कहने पर उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा एक समय आएगा कलयुग के लिए हम इस रूप में अवतरित हो गए, धारु ब्रह्म के रूप में, तो हमारा रूप ऐसा होगा। कैसा होगा, है ना, आंखें बड़े, कृष्ण काले वर्ण के, बलराम सफ़ेद, हाँ सुभद्रा का रंग क्या है, पीला है, और लाल रंग है सुदर्शन, ऐसे अलग अलग रंग। तो इसलिए इनको जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ यानि ये पूरी नाथ है, यहाँ के जो पूरी के लोग बोले अरे हमारे नाथ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जगत के नाथ है। तो इसमें कौन, अमेरिका भी आ गया ना। तो इसलिए एक 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 साधु हमें बता रहे थे कि भगवान का काला रंग ये प्रतीक कर रहा है कि जितने अफ्रीका के काले वर्ण के लोग हैं उन लोगों के लिए हूँ मैं, और बलराम जी जो गोरे हैं वो किसके लिए हैं, सब अमेरिकन यूरोपियन के लिए, और सुभद्रा का रंग कौन सा है, अरे वो चाइनीज, जो सब वो लोग सब के लिए हैं, और जो रह गए बाकी लाल रंग के वो सुदर्शन। तो सबके नाथ है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। तो इसलिए प्रभुपाद के इस असीम कृपा से आप सोचेंगे कैसे ये सब हो गया, हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये सुन रहे हैं, ये तो मैं किसी को नहीं मालूम था। तो प्रभुपाद जब अपने गुरु से उनको ये आदेश मिला कि चैतन्य महाप्रभु का ये कृपा सबको मिलना चाहिए, तो फिर ये परदेश गए। आप सब जानते हैं कि 70 साल के उम्र में अकेले बिना कोई मदद, सिर्फ अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा, हरिनाम पर श्रद्धा, और उन्होंने पूरा एक क्रांति मचा दिया वहां जाकर। तो उन शुरुआत के उन दिनों की आप सोचिए कि कैसे लोगों को प्रचार कर रहे थे। अब ये भी एक भाव आता है कि कितने कृपालु है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि मुझे जाना है वहां पर, लेकिन वहां पर कैसे प्रकट हो गए। पाशा देश में तो कृष्ण का नाम नहीं सुना है, जगन्नाथ का नाम कौन सुना है, किसी को कुछ नहीं मालूम। प्रभुपाद तो शुरुआत में बस इतना ही बता देते हैं, उनको सिर्फ प्रसाद खिला देते हैं, थोड़ा हरिनाम के बारे में बता देते हैं। फिर एक बार ऐसे हुआ, सैन फ्रांसिस्को जैसा एक जगह है, तो एक उनकी एक शिष्य थी मालती प्रभु, तो वो एक ऐसे कहीं ढूंढते ढूंढते एक ऐसे दुकान में गई तो उसको एक गुड़िया मिल गया, अजीब सा। तो उसको तो अजीब सा लगा, लेकिन पीछे देखा लिखा है मेड इन इंडिया, तो उसको लगा मेरे गुरु तो मेड इन इंडिया है। ऑफकोर्स मेड इन इंडिया नहीं, वो तो जगत गुरु है, लेकिन है इंडिया के, तो ठीक है मैं उनको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने वो गुड़िया को ऐसे ही बिना पैसे दिए ऐसे उठाया और जाके अपने गुरु को दिखाया। वो था जगन्नाथ जी का छोटा। प्रभुपाद जैसे देखा उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो मालती माता जी आश्चर्य, अरे ये गुड़िया है, अरे गुड़िया नहीं है, ये जगन्नाथ जी है, जाओ और जाके देखो और भी दोग हो गए। तो उसने कहा कि मैंने तो पैसा नहीं दिया है, मैं तो ऐसे ही उठा के लाई। अरे जाओ, फिर जाके उसने लेके आया। तो प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि ये समय आ गया है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का पाश्चात्य देश में अवतरित होने का। उन्होंने अपने शिष्यों को बुला, क्या तुम ऐसा बना सकते हो? तो उन्होंने हाँ, वो तो वो कारीगर था, वो हाँ कारपेंटर था, उन्हें बना दिया वो जगन्नाथ बलदेव ऐसे लकड़ी से बनाया। अभी रथ कहाँ है, रथ क्या बड़ा? तो ट्रक होता है ना, ट्रक, ट्रक का पीछे का भाग होता है फ्लैट, उसमें बिठा दिया। बोलो ये साल में एक बार हमारे यहाँ पर रथ यात्रा होता है तो हम लोग यहाँ करेंगे। ऑफकोर्स रथ यात्रा के पहले उन्होंने पहले मंदिर में रखा और बोला ये भगवान है। प्रभुपाद से इनका इतना प्रेम था, प्रभुपाद जो भी बोलते थे वो 100% मान लेते। प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण है, कृष्ण है, ये बलराम है, ये सुभद्रा है, ये रूप में ये आए हैं कलयुग में हम सबको कृपा देने के लिए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, आप उनकी आरती करना चाहिए। आरती क्या होता है, उनको तो खाली कैंडल मालूम है, ये पकड़ो कैंडल, मोमबत्ती, मोमबत्ती तो मालूम है, उसको घुमाओ ऐसे। तो कितने बार घुमाओ, जब तक हाथ नहीं थकता है तब तक घुमाओ। क्या करने का और क्या करें, ऐसे करो तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो उनको दे दो, उनको करो। ऐसे खोलकर प्रभुपाद दूसरे केंद्र में चले गए। सो एक दिन प्रभुपाद आए तो देखते हैं ऑल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं है। तो पूछे अरे किधर है, अरे वो शिष्यों ने लेके गया गार्डन में। अरे गार्डन में क्यों लेके गए, प्रभुपाद आपने कहा था ना हमें जो अच्छा लगता है वो हम उनको करते, हमको गार्डन जाना अच्छा लगता है तो हमने उनको गार्डन लेके आया। तो अरे ऐसा नहीं होता है, भगवान निश्चित आते हैं एक बार, लेकिन साल में एक बार बाहर आते हैं, वो है रथ यात्रा। तो ये है भगवान की असीम 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 कृपा कि वो साल में एक बार बाहर क्यों आते हैं। बहुत लोगों को अंदर आना प्रवेश नहीं है जगन्नाथपुरी में, हाँ परदेशियों को तो नहीं है, और दूसरे भी अगर आप हिंदू नहीं हैं, हम तो सहमत नहीं हैं इससे, लेकिन उनकी एक प्रथा है कि ठीक है। तो भगवान आज के दिन, जैसे अभी है बाहर आएंगे, तो आज के दिन वो रथ से बाहर आते हैं। आंखें बड़े कर सबकी तरफ नजर करते हैं, जो नहीं आना चाहते, नहीं देखना चाहते, बोलते टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है मैं आ रहा हूँ बाहर, ऐसे करके सबको। जब वो बाहर आते हैं, पहले वो जब उसके उनके जो आसन में रहते हैं उसमें तो कृपा है, लेकिन जब बाहर के रथ में बैठते तो उनकी कृपा और बढ़ जाती, और जब गुंडीचा पहुँच जाते तो कृपा और बढ़ जाती। ऐसे कहा जाता है कि जो गुंडीचा मंदिर में दर्शन करते हैं एक बार, वो 10,000 बार जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर में दर्शन किया जैसा है, उनकी कृपा बढ़ते जाती है। देख, तो ये तो है। जब इंद्रद्युम्न महाराज, इंद्रद्युम्न जो राजा थे, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो मुझे नहीं चाहिए कुछ, ऐसे कहा कि मैं तो प्रसन्न हूँ, आपने बस अपना रूप अपना दर्शन दिया, फिर भी तुम मांगो। अगर ठीक है आप चाहते हैं तो मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि मेरा कोई वंशज ही नहीं रहे। अरे ऐसा ही राजा बोलते मेरा वंशज, हर एक राजा तो अपना चाहता है कि वंशज आगे बढ़े। बोलते क्यों आगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे लोग ये बोलना चाहिए मेरे पिताजी का मंदिर है बोल के हक नहीं जमाना चाहिए, इसलिए मेरे वंशज ही नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, दूसरा क्या? दूसरा ऐसा है कि आपके हाथ प्रसाद से हमेशा गीले रहे, पूरा दिन आपको प्रसाद खिलाते रहूंगा, ऐसा आप हमें। तो आज आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, भगवान का सुबह से लेके शाम तक इतना एक भोग हो गया, हाथ धोने से पहले दूसरा आ जाता है, भगवान का हाथ गीला, इतना सेवा दे रहे हैं, और वही प्रसाद क्या होता है फिर बांटते हैं ना सब। तो इस तरह से प्रसाद के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने पूछा फिर तीसरा क्या? तीसरा है कि आप बस अपने आंखें खोल कर हमेशा दर्शन देते रहिए। भगवान का आंखें देखे ना, कभी ऐसे बंद होता ही नहीं है, पलक ही नहीं है वहाँ। तो पुरी में जाएंगे दर्शन 1 बजे तक खुला रहता है, फिर 1 बजे के बाद 3 बजे फिर खुलता है। तो क्या दो घंटा सोते हैं क्या वो? 1 बजे जब दर्शन बंद होता है तभी उनका कपड़े, जैसे हमारे यहाँ पे शयन दर्शन होता है तो भगवान का श्रृंगार उतार कर दूसरे कपड़े पहन, लेकिन जगन्नाथ जी उल्टा और श्रृंगार करके दर्शन बंद होता है 1 बजे। क्यों? क्योंकि 1 बजे देवता लोग आते हैं दर्शन कर, 1 से 3 बजे के सामने, यानी पूरा दिन दर्शन दे रहे हैं, दिन में तो कलयुग के सब जीवों के लिए और 1 से 3 देवताओं के लिए। तो बिना सोए सिर्फ 24/7 कृपा बरसा रहे हैं, ये है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो उनके हमें आज हम उनके उत्सव मना रहे हैं, और जब आपने उनकी कृपा देखो, अगर स्नान यात्रा जब होता है ना 15 दिन पहले, हाँ उसके बाद 15 दिन भगवान, तो उन दिनों में वो पांडा जो ब्राह्मण घर के उन वो लोग नहीं सेवा करते हैं, वो सबर जात के यानी वो जात बहुत ही सामाजिक नज़र से बहुत ही नीचा जाता है, वो लोग करते हैं। वो लोग ऐसा सेवा करते हैं कि भगवान को भोग चढ़ाते हैं और अपना प्लेट भी रख के वहीं पर खाते हैं, और वो झूठा प्लेट छोड़ के भी जाते हैं वहाँ पे, भगवान उससे प्रसन्न है। पांडा लोग मंत्र बोल के उनको प्रसन्न करते हैं, और ये जो सबार वाले सबर जात के हैं बस अपना भाव से करते, और जब भगवान रथ से बाहर आते हैं तो आप देखिए पांडा लोग कभी ऐसे हाथ ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, और बाहर आने के बाद कोई भी आकर मिल सकता है, आलिंगन कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। तो इस तरह से ये जो रथ यात्रा है कोई साधारण नहीं है, बहुत विशेष है। तो ये है औदार्य भाव। तो जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा विशेष स्थान है, धाम है विशेष, जहाँ पे अलग अलग तरह के रस आदान प्रदान होते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐश्वर्य भाव द्वारका का, और जब वो रथ से जाकर गुंडीचा पहुँचते हैं तो वृंदावन भाव माधुर्य, और बीच में रास्ते में प्रसाद बटता है, सब लोग जाकर मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, वो है औदार्य भाव, जो चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष इस संसार में आए थे हम सबको देने के लिए। तो इस तरह अनेक ऐसे उनके बारे में लीलाएं हैं, तो उसके लिए हमें समय नहीं है, ज़्यादातर जगन्नाथपुरी के धाम में लीलाओं के लिए बहुत प्रख्यात है ना, और एक बार ऐसे हुआ, लेकिन इस लीला में हम ऐसे सीख सकते हैं, जो कोई भी हो, कौन से भी जात का हो, कितना भी पापी हो, जो भी हो, अगर वो सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से भगवान की आश्रय लेना चाहता है, एक नम्रता से, वही निस्साय भाव से कि मैं चाहता हूं कि मैं आपका आश्रय लूं, उसके साथ वो आदान प्रदान करते। तो ऐसे बहुत कथाएं हैं, तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, और आज शाम को आप ज़रूर आएंगे तो ये जगन्नाथ कथा आगे और बढ़ेगी। तो हमारे सीनियर वरिष्ठ भक्त श्रीमान गौरांग प्रभु कथा करेंगे, उसमें आप लीला सुनेंगे, तो लीला बहुत हैं। तो अभी हमारे पास, हम यहाँ पे आज के इस जगन्नाथ बलदेव जगन्नाथ अपने रथ यात्रा महोत्सव का कथा को हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ ही समय में दर्शन खुलेगा, आरती होगा, उसके बाद सबके लिए, सबके लिए क्या है और क्या प्रसाद के बारे में आपने सुना है? हाँ, तो ये प्रसाद कोई साधारण नहीं है, इसके लिए प्रसाद को जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, अगर और ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा लेना, लेकिन प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। आपने सुना ना नारद मुनि और शिव जी और पार्वती से, अब याद करना, जब भी प्रसाद लेते समय सुनना ऐसा है, ये प्रसाद साधारण नहीं है, ये भगवान की बहुत महान कृपा हम सबको मिल रही है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समस्त भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आदिकेश्वर प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी का अवतरण जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, उत्कल देश में, और फिर जगन्नाथ जी का अवतरण जो है, उनका जो रूप है द्वारका में कैसे प्रकट हुआ, और फिर कैसे जगन्नाथ जी पाश्चात्य देश में गए, उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। इसलिए प्रभु जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, तीन बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद है आपके। और हम आज जो विशेष करके जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, उनके लिए श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपका जो आज से आपका जीवन जो है कृष्ण भावनामय बने, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।
Just remove the...